SBS हिंदी के श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल तक बंद रहने के बाद भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रविवार से दोबारा शुरू हो गई हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में खासी तेज़ी आने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कोविड महामारी की पहली लहर आने के साथ ही 23 मार्च 2020 से बंद कर दिया गया था और बायो बबल के तहत केवल कुछ देशों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही थीं। केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया,
आज के दिवस पर दोबारा भारत को विश्व के साथ जोड़ने का तारतम्य शुरू हो चुका है। सारे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आज से खुल चुके हैं। भारत को पूरे विश्व के साथ जोड़ने का अभियान दोबारा शुरू हुआ है। राष्ट्र के अंदर 100% कैपेसिटी हमने 18 अक्टूबर को खोल दी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ जोड़ने की कैपेसिटी आज से 100% पूर्ण रूप से खुल चुकी है।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग ली के बीच हुई 3 घंटे की बातचीत के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेनाओं के भारी जमावड़े और तनाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे अफगानिस्तान और यूक्रेन पर साफ गोई से चर्चा हुई। भारत ने अपना रुख बिना लाग लपेट के चीन को बताया, जो वार्ता के फौरन बाद श्री जयशंकर ने प्रेस को संबोधित करते हुए साझा किया।
Ongoing friction areas. We've also made a lot of progress in resolving some other friction areas, and Pangong So is notable in that regard. So essentially our discussion today was to how to take this forward. Now you all know that the senior military commanders have been meeting. There have been 15 rounds. The point is that so long as there are very large deployments in the border areas which are violative of the 1993 and 96 agreements, clearly the border area situation is not normal.
इस वार्ता के अगले ही दिन शनिवार को श्री जयशंकर मालदीव्स और श्रीलंका के दौरे पर निकल गए। मालदीव में श्री जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट NCPLE के उद्घाटन में भी भाग लिया। श्रीलंका में श्री जयशंकर 30 मार्च को होने वाली 5वीं प्राइम मिनिस्टर लेवल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानि बिम्सटेक समिट के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बिम्सटेक समूह के देशों में भारत और श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। इन मुलाकातों को चीन के हिंद महासागर में बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट में 8 लोगों को जलाने के मामले में CBI ने 21 लोगों को आरोपी बनाया है। CBI ने राज्य सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के पास से केस की डायरी और अन्य ज़रूरी दस्तावेज ले लिए हैं। शुक्रवार को ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि चूंकि राज्य सरकार की SIT मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, इसलिए जांच CBI को सौंपी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
सामान्य लोग से लेकर सारे पार्टी मीडिया का भी ये डिमांड था कि CBI इंक्वायरी हो, क्योंकि बंगाल की जो सरकार है, ममता सरकार, इनकी जो कैपेसिटी सबको मालूम है, सब लोगों को मालूम है। नारद शारदा का जो लगभग 80,000 का घोटाला हुआ है चिट फंड का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश से CBI इंक्वायरी हो रही है। पोस्टल वायलेंस हुआ, उसमें भी CBI इंक्वायरी हो रही है। और हर बार कोई घटना होता तो SIT गठित करके उसको दबाने का ममता बनर्जी प्रयास करते हैं, इसलिए उन पर भरोसा नहीं, अदालत को भी भरोसा नहीं था, इसलिए अदालत अपने हाथ में ले लिया। किसी एक जस्टिस के देखरेख में सारा इंक्वायरी चलेगा और 7 तारीख तक रिपोर्ट आएगा।
लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने CBI जांच पर संदेह जताया है। तृणमूल के महासचिव कुणाल घोष ने CBI और भाजपा पर सवाल करते हुए कहा,
वी कंडम द इंसिडेंट एंड आवर गवर्नमेंट हेडेड बाय ममता बनर्जी, वी हैव टेकन ऑल नेसेसरी स्टेप्स नीडेड रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड नाउ वी हैव सीन द सीबीआई ऑर्डर. वी विल कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीबीआई एंड वी विल नॉट अपोज द ऑर्डर ऑफ सीबीआई, बट वी हैव सम स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन डन बाय सीबीआई. Our leadership, our party stand, we think that BJP has been refused by Bengal of people in elections. So they are trying in a different way with some larger conspiracies. BJP, Dui Bhai, EDR, CBI. There are capable enough officers in ED and CBI, but the organizations are used by BJP.
तृणमूल कांग्रेस अध्यक्षा ममता बनर्जी ने चेताया है कि यदि भाजपा ने सीबीआई के माध्यम से हिंसा की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की तो उनकी पार्टी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी. 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली भारतीय सुंदरी हरनाज संधु ने एक कार्यक्रम के दौरान हिजाब पर पूछे गए एक सवाल पर अपना नज़रिया रखा. उन्होंने कहा कि लड़कियों के पर मत काटिए, उन्हें पढ़ने दीजिए.
हमेशा लड़की को ही टारगेट क्यों करते हो आप? अभी भी मेरे को ही टारगेट कर रहे हो आप. हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो. उसको जीने दो जिस ढंग से वो जीना चाहती है, उसको अपने मुकाम तक पहुंचने दो, उड़ने दो. वो उसके पैगाम है, वो उसके पर है, आप मत काटो. काटने हैं तो अपने आप के काटो.
ज्ञात रहे कि हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिनमें शिक्षा संस्थानों की कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी. और अब पेश हैं खेल जगत के समाचार. भारत की पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल्स में शानदार खेल दिखाते हुए थाईलैंड की बुसानन ओंग बाम रुंगफान को सीधे सेटों में 21-16, 21-8 से हराकर स्विस ओपन का खिताब जीत लिया है. वर्ष 2022 में यह सिंधु का दूसरा खिताब है. इससे पहले उन्होंने जनवरी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जीता था. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच में साउथ अफ्रीका ने बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत को 3 विकेट से हरा दिया, जिसके चलते भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया. आखिरी गेंद फेंके जाने तक भारतीय टीम की जीत की उम्मीद बंधी हुई थी. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 274 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. शेफाली वर्मा ने 53 रन बनाकर शानदार शुरुआत दी. स्मृति मंधाना ने भी शानदार 71 रनों की पारी खेली. भारत की कप्तान मिताली राज ने 68 रन बनाए. साउथ अफ्रीका की ओर से लॉरा वोल्वाडर्टो ने शानदार 80 रन और लारा गुडऑल ने 49 रनों की उपयोगी पारी खेली. अंतिम ओवर में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए केवल 7 रन चाहिए थे, तभी त्रिशा चेट्टी के रन आउट होने से मैच रोमांचक हो गया. इसके बाद दीप्ति शर्मा ने मैग्नॉन डूप्रीज को 50 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर मैच को रोमांचक चरम पर पहुंचा दिया. लेकिन टीवी रिप्ले में पता चला कि दीप्ति का पांव क्रीज लाइन से बाहर निकल गया था, जिसके बाद मैग्नॉन डूप्रीज नॉट आउट घोषित कर दी गई. साउथ अफ्रीका ने अंतिम 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. इसी के साथ आज के समाचार समाप्त करने की अनुमति दीजिए. नमस्कार.